کہ رمضان کی لذتیں ہمارے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے مقابل پر ان کے دل کو یہ تو تسلی ہے کہ آج اگر کسی جماعت کے دنیا میں روزے قبول ہو رہے ہیں، اگر خدا کی نظر اپنے کسی بندے پر پیار اور محبت کے ساتھ پڑ رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جو شریک جرم ہونے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے پھل سے محروم ہوئے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روزے داروں کو ان روزوں سے ڈراتے ہیں جو ان کے لیے محض مشقت اور دکھ اور مصیبت لے کے آتے ہیں، لیکن نیتوں کے بگاڑ کے باعث ان میں کوئی ثواب کا پہلو باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بیسوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے روزے روزہ رکھنے والوں کو مطلب فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے روزوں کی روح کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری ظاہری مشقت سے خوش نہیں ہوگا اگر تمہاری نیتیں صاف اور پاک نہ ہوئی، اگر خالصتاً للہ تم نے روزے نہ رکھے، اگر ان روزوں کے ایام میں تم نے بد خیالات اور بد اعمال سے اجتناب نہ کیا تو تمہارے روزے کی ساری مشقتیں بیکار جائیں گی، تمہارے جسم کو دکھ تو دیں گی لیکن تمہاری روح کے لیے کوئی تسکین کا سامان قدر نہیں کر سکے۔ تو بظاہر اس وقت جماعت احمدیہ کی حالت دردناک ہے اور بڑے کرب کے ساتھ جماعت پاکستان میں درب رہی ہے، اور اس کرب کے نتیجے میں باہر کی جماعت بھی اسی طرح بے قرار ہے اور دکھ سے بے حال بھی جاتی ہے، لیکن اگر امر واقعہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دردناک حالت ان کی ہے جو آج شادیاں نے بجا رہے ہیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری مشقتیں سب کچھ بیکار نہیں اور ان کی سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ سزا کا دور نہیں ہے، یہ کبھی نتیجہ ہے، لیکن سزا کا دور ابھی ان کے لیے باقی ہے، اور اللہ تعالی سزا میں ڈھیل تو کر دیتا ہے لیکن خدا کے ہاں اندھیر بہرحال نہیں۔ املی لہم نہ قیدی متین کا قانون لازم چلتا ہے، اس لیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو اس وقت بچا سکے جب خدا اس کی پکڑ کا ارادہ کر لے۔ بس اس پہلو سے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بڑی تعداد ایسی پیدا ہو رہی ہے جن کے اندر شرافت اور انسانیت جاگ رہی ہے، جن کے اندر اسلام کی نیکی کی روح کروٹیں بدل کی بیدار ہو رہی ہے، اور اپنے عمل سے بعض اور بعض اپنی زبان سے بھی بڑی شدت کے ساتھ ان مذہبی رہنماؤں سے سخت بیداری کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی نیک آثار ہے، بہت ہی اچھی ہوا ہے جو چلی ہے، اور اس کے عقب میں لازماً اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی بڑی خوشخبری آنے والی ہیں۔ ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ ساری قوم پر یہ جذبہ غالب آ جائے اور ان کی نیکیاں ان کی بدیوں کو دبا جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں دشمن کے لیے دعا سے بھی باز نہیں رہ سکتا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرا تو یہ مطلب ہے کہ دعا میں دشمن کو بھی باہر نہ رکھے، جس قدر وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہوگا، اور جس قدر دعا میں حکم کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت وسیع ہے جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ پس دعا میں دشمن کو یاد رکھنا یہ بھی ایک سنت ابرار ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا دشمنوں کے لیے دعائیں کی۔ بس وہ جو دوست بن رہا ہو، وہ دوست جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک پیار کی ہوا چلا رہا ہو اور رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بدل رہی ہو، जिस तरह मौसम बदलता है, अच्छे मौसम में तो शुरू में हवा के बराबर बस्ते आते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ठंड का पैगाम आते हैं, फिर उसके पीछे पीछे भरपूर बरसाती या बहार की हवाएं चलने लगती हैं। वैसे ही आसार मुझे खुदा तआला के फजल के साथ पाकिस्तान में नजर आते हैं और दुश्मनों के दिलों को भी अल्लाह ताला बदलता चला जाता है। हैरत अंगेज वाकयात सामने आ रहे हैं, यहां तक कि बाद लोगों के मुतल्लिक ये मालूम हुआ जब उन्होंने बैत की तो उनके वालदैन ने उनको घरों से निकाल दिया, उनका बायकॉट किया और शदीद अज़ियत दी। लेकिन अब जब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है तो उन्हीं लड़कों की तरफ से इत्तला मिली कि हमारे वालदैन, हम दोबारा गए घर तो हमारे वालदैन हमसे गले लग लग के फूट फूट कर रहे कि क्या अंधेर हो गया। और उन्होंने ऐलान किया कि अब हमें समझ आई है कि तुम लाजमन सच्चे हो, क्योंकि सच्चों के सवा किसी कौम के साथ ये सलूक नहीं होता। ऐसी तब्दीली हैरत अंगेज पैदा हो रही है कुलूब में कि वो लोग जो पहले इहरार का ईंधन बना करते थे, यानी अवामुन्नास गलियों में फिरने वाले, रेड़ों वाले, गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, अब अल्लाह ताला के फजल के साथ वो अपने उलमा को छोड़ छोड़ कर जमात के हक में गैर मामूली तौर पर जुर्रत के मुजाहरे कर रहे हैं। ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि बाद गैर अहमदी नौजवानों ने अहमदी की ऐसी जुर्रत के साथ तायद की और खसूसन इस मजलूबियत के बारे में कि उनकी अपने बाद दोस्तों से लड़ाइयाँ होगी और वह मुश्किल लोगों को बीच में पढ़ के छुड़ाना पड़ा। एक हमारे रब्बा के दोस्त फैसलाबाद गए चंद दिन हुए, जिस रिक्शे में बैठे उस रिक्शे वाले को महसूस हुआ कि अहमदी है। उसने पूछा कि क्या आप अहमदी हैं? उसने कहा हाँ मैं अहमदी हूँ। वो कहते हैं कि रोते रोते उससे रिक्शा चलाना मुश्किल हो। उसने कहा आपको पता नहीं कितनी तकलीफ है, लेकिन जो आपके साथ जुल्म हुआ है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं। और रिक्शे से उतार के बहुत उन्होंने कोशिश की लेकिन वो पैसे नहीं देता। आखिर बड़ी मिन्नत करके उसको मोहब्बत और प्यार से जला से देकर जबरदस्ती उसको पैसे दिए। ये कुदरत की जो हवाएं चल रही हैं किसी इंसान के बस की बात नहीं है, किसी इंसान के हाथ का खेल नहीं। अल्लाह ताला के फजल के साथ वो सब्र है जो जमात दिखा रही है और सबसे सब्र से बड़ी कुवत कोई दुनिया में नहीं। हैरत अंगेज इंकलाब दुआ कर लेती है सब्र से, और सब्र ही है जो मकबूल दुआओं में ढलता है। बस इस सब्र को भी जिंदा रखें और उन दुआओं को भी जिंदा रखें और जहां तक बस हो दुश्मन के लिए भी दुआ करें और जिन दुश्मनों से बड़ी कसरत के साथ मोहब्बत के कतरात जाहिर हो रहे हैं, जिन दुश्मनी के बादलों से वो खतरात बरसने लगे हैं आपके, उनके हक में भी और दुआएं कर तेज कर। लेकिन जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में भी कहा था, इस्लाम एक मुतवाज़िन मजहब है, कोई जज्बाती मजहब नहीं है जो यकतरफा रुख इख्तियार करे और फिर उसी से चलता ही चला जाए। आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवज़ुन सीखना चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शदीद दुश्मनों के लिए भी दुआ करने वाले थे, खुसूसन वो जो जहालत में जुल्म करते थे। आपके मुतलिक आता है कि जब बदन जख्मी था, लहू लहान था, अपने ही खून से आपके मौजे इस तरह भर गए थे और जूते के चला नहीं जाता था, अपने खून की पिस्टल बन गई, उस वक्त भी आपने उनके लिए दुआ की क्योंकि आप जानते थे कि ये लोग जाहिल हैं, इनको इल्म नहीं है ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अइमतुल कुफ्र के खिलाफ, अइमतुल तकफीर के खिलाफ आपने बददुआ भी की है और एक मरतबा नहीं, एक मरतबा बददुआ की, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान की फितरत सही आ ये बता देती है कि बाज़ लोग अपने जुल्म और सफाकी में ऐसा बढ़ चुके हैं और इमाम बन गए हैं तकफीर, उनके मुकद्दर में हदायत हो ही नहीं सकती। ऐसे मौके पर चोटी के बाद लोग जो इस जुल्म और सफाकी के रहनुमा हों और लीडर हों और अपनी शरारत में पीछे हटने की बजाय दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए बद्दुआ सुन्नत-ए-नबी। इसलिए मैंने बदुआ की जब इजाजत दी तो कोई अपनी तरफ से नाउजुबिल्लाह मिन दारिक सुन्नत से गुरेज नहीं किया, बल्कि सुन्नत नबी को मद्देनजर रखते हुए ऐसी बात कही। चुनांचे हजरत इब्ने अब्बास की रवायत है बुखारी में कि जंग बदर के वक्त बाद आइमत तकफीर के खिलाफ आम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बतवाई और फिर अल्लाह ताला ने आपको बताया कि उनकी लाशें कहां कहां पड़ी हैं। चुनांचे वो कहते हैं कि हमने देखा ऐसे बदहाल में उनकी लाशें पड़ी हुई थी कि धूप ने उनको मुतवय्यर कर दिया और वो इबरत का निशान बने हुए थे। इसलिए सुन्नत नबी के मुताबिक वो लोग जो आंखें खोल कर शरारत और फसाद की नीयत से और नहायत जालिमाना बेबाकी के साथ दिन ब दिन मजालिम में बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ बद्दुआ ही मोमिन की तकदीर का एक हिस्सा है। इसलिए इस रमजान से पूरा फायदा उठाएं, अपनी दुआओं को भी इंतहा तक पहुंचा दें और खुदा की नजर में जो अइमतुल तकफीर हैं उनके लिए बद्दुआ को भी इंतहा तक पहुंचा दें। एक तरफ अल्लाह के नेक दिल और पाक बंदों पर बे इंतहा फजल नाज़िल हों और एक तरफ वो जो दुनिया की को बेराह की तालीम देते हैं, उनकी गुमराही में उम्मीद बनते हैं, उनको खुदा ताला ऐसा इबरत का उनको खुदा ताला दुनिया के लिए ऐसा इबरत का नमूना बना दे कि उनको देखकर फिर हदायत मिल जाए। ये तो आम कैफियत है जो इस वक्त हर अहमदी के दिल में मौजूद है और उसी कैफियत को मैं उभार रहा हूं और नुमाया कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं यकीन दिलाता कि इन सारे अमूर के मुतालिक हजरत अब्दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इतनी दुआएं कर गए कि वो एक ना खत्म होने वाला खजाना पीछे छोड़ गए। हम दुआएं करेंगे और शायद हमारे दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जाए कि हमारी दुआओं के जोर से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसी बात होगी जैसा बाप बच्चे को कोई वजन उठवाने के लिए कह दे और कहे कि उठाओ और एक तरफ से खुद उसको पकड़ ले और बच्चा समझे कि मैं उठाता हूं। हमारे वाकया ये है कि दो दफा ये अजीबोशान वाकया दुनिया में गुजर गए हैं। सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बोलते तो फर्द दिखा रहे लेकिन वो मोजे सहाबा के हाथों से दर्द हो रहे। इसलिए वो जो फारिस बिल्ला नहीं है उसको ये नजर आ रहा था कि सहाबा के हाथ के काम दिखा रहे हैं लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कुछ और नजर आया। आपने फरमाया जानते हो जो अरब के बियाबानों में माजरा गुजरा वो क्या था और इसके बाद फरमाते हैं वो एक फानी बिल्ला ही बिल्ला की दुआएं तो थी। इस दौर में भी अल्लाह ने हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में एक फानी फिल्ला हमें अता किया है और इस कसरत के साथ आपने अपने वक्त के लिए और आने वाले वक्त के लिए जमात के लिए दुआएं की हैं। इस तरह गिरिया उदारी के साथ खुदा के जुलूस करते हैं तो एक ना खत्म होने वाला खजाना है। इसलिए वो दुआएं हैं जो काम करेंगी और हमारी दुआओं की हवा भी चलेगी जब हमारी आहें भी शामिल हो जाएंगी जब हमारी हकीर कोशिशें भी मिल जाएंगी तो महसूस तो यह होगा कि अजीम शान नतायज खुदा हमारे हाथों में दिखा रहा है। लेकिन भूलना नहीं कि हमारे इमाम और हमारे आका की गिरिया और वारी है जो दरअसल आज भी हमारे काम आ रही है, आज भी हमारे ऊपर छतरी बन गई, आज भी हमारे ऊपर फजलों का साया बन गया। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसी दुआ का जिक्र करके फरमाते हैं ज़ियाए है ज़ुमरे अब्दाल वाजद तरसी अलल खुसूस अगर आज मीजा बादशाह। खबरदार है दुश्मन ज़ुमरे अब्दाल की अणों से तुम्हारे लिए खौफ लाजिम है अलल खुसूस अगर वो मीर्जा की दुआ हो जाए तो उससे तुम्हें डरना चाहिए। इतना ज़ुमशान कलाम है जब तक एक अल्लाह ताला का बंदा जानता ना हो कि खुदा लाजमन हमेशा हर आम मेरे साथ है उस वक्त तक ये कलाम उसे नहीं कर सकता। فرماتے ہیں کہ ابدال کی دعاؤں سے دعاؤں سے ڈرنا چاہیے رہے انسان، لیکن ابدال میں سے بھی میں اور میرزا جس کا خدا سے ایسا پیار کرتا تھا، اس کی بد دعا کو کس طرح تم نظر انداز کر سکتے ہو؟ اس لیے احمدیت کے دوستوں کے حق میں، بالعموم انسان کے حق میں، بالعموم ان دشمنوں کے حق میں جو دوسرے درجے کے دشمن کہلاتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی بدعا کر گئے ہیں. اس لیے ہم بھی اگر کچھ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حیرت انگیز کام دکھائے گا. یہ تو خبریں ہیں کچھ حال کی، کچھ مستقبل کی جو ہو، اور حال کا غم کس طرح مستقبل میں خوشیوں میں تبدیل ہوگا یہ مضمون ہے. لیکن حال کا غم حال کی خوشیوں میں بھی تو بدل رہا ہے، اس کی طرف بھی تو توجہ کرنی چاہیے تاکہ دل حمد اور شکر سے لبریز ہو جائے. جماعت احمدیہ پر جب بھی مصیبت آئی ہے، جتنی بڑی مصیبت آئی ہے اتنا ہی زیادہ جماعت نے ہمیشہ اخلاص اور وفا کا نمونہ دکھایا ہے. حیرت انگیز جماعت ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں. کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر ایسے خطرناک ابتلاء آئیں اور وہ اپنی وفا اور ایثار اور قربانی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے. بس پاکستان میں بھی جماعت کا یہی حال ہے، اور حیرت انگیز اخلاص کے اندر اضافے ہو رہے ہیں. جو خطوط آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بعض دفعہ مسجد کی زیارت سے بھی محروم رہتے تھے، وہ تہجدوں میں اٹھ کر گریا اداری کرتے ہیں، اور اس کثرت سے دعاؤں کے خط آتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے اللہ ہمیں شہادت نصیب. اور ہر طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے خاندان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی طرف سے بھی بڑے دردناک خط آ رہے ہیں. یہ دعا کریں اور ہمیں وعدہ دیں اپنا کہ جب آپ نے جان کی قربانی کا مطالبہ کیا تو پہلے ہمیں موقع دیں گے، دوسروں کو بعد میں دیں گے. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ قربانی کے ہر میدان میں آگے رہے. چنانچہ ذہنی طور پر میں تیار ہوں اور میں نے بات عہد کر لی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ان نوجوان بچوں کا اخلاص ضائع نہیں جائے گا. لیکن ساری جماعت کا یہ حال ہے پاکستان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ ایسا معجزہ ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہو. نہایت وہ لوگ بےچارے جن کو ہم رتی سمجھتے تھے، اس قدر جوش اور محبت اور اخلاص کے ساتھ جان دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں صرف ایک اشارے کی ضرورت. تو یہ جماعت تو مٹنے والی جماعت تو نہیں. کون سی دنیا کی طاقت ہے جو ایسی جماعت کو مٹا سکے جو ہر ظلم کے وقت زیادہ روشن ہوتی چلی جائے، ہر اندھیرے میں اس کو نیا نور خدا کی طرف سے عطا ہو. چنانچہ باہر کی جماعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی اخلاص ہی جذبہ ہے. گزشتہ خطبے میں میں نے مالی قربانی کی تحریک پیش کی تھی کہ پانچ یورپ میں سرداس دو یورپ کے مراکز بنانے کا ارادہ ہے، کیونکہ اس سلسلے کے کام بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ چھوٹا سا رقبہ جو کسی زمانے میں بہت بڑی جگہ نظر آیا کرتی تھی، یہ تو بالکل ناکافی ہو چکا ہے. لندن کی جماعت کے لیے بھی ناکافی ہو چکا ہے، بجائے یہ کہ ہندوستان یا یورپ کے حصے کا مرکز بنے. اور پھر جو تبلیغ کے منصوبے نئے بن رہے ہیں ابو شام، ان کے لحاظ سے تو بہت بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں. بہت بڑے بڑے دفاتر کی ضرورت ہے، مشینوں کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. اس لیے لازماً ہمیں سر دست دو مرکز ضرور یورپ میں بنانے پڑیں گے، وسیع پیمانے پر، ایک ہندوستان میں اور ایک جرمنی میں. پھر آہستہ آہستہ اور مراکز بن جائیں گے، ایک ملک کا ایک مرکز ہو جائے گا. اس تحریک کے نتیجے میں خدا کے فضل سے اب تک اگرچہ بہت سے احباب کے وعدے آنے والے ہیں، لیکن جو سر دست وعدے آئے ہیں، انگلستان کے وعدے 191,752 پاؤنڈ کے وصول ہو چکے ہیں، اور مغربی جرمنی کی طرف سے 86,550 پاؤنڈ کے وعدے آ چکے ہیں. اسی طرح امریکہ کی طرف سے 140,845 पाउंड के वादे वसूल हो चुके हैं और कुल वादे अब तक 419,147 पाउंड के बनते हैं, जिनमें से 45,000 पाउंड से कुछ ऊपर या 46 के करीब ये तो नकद वसूल हो गए हैं। और बाद दोस्तों ने जैसे एक हमारे हिंदुस्तान के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने 50,000 पाउंड का वादा किया है। वो फरमाते थे कि मैं जून में अदा कर दूंगा, तो बीमार भी हैं उनके लिए दुआ भी करें अल्लाह तआला फरमाए। और इसी तरह अमेरिका के एक नौजवान डॉक्टर ने, बावजूद इसके कि अमेरिका को बरह रास्त मुखातब नहीं किया गया था, $50,000 का वादा किया है जो वह तमीज भिजवा देंगे इंशाल्लाह। ये वादे तो हैं जो अमूमन मोटी मोटी रस्मों के, लेकिन जमात के दोनों किनारे अल्लाह ताला ने कुर्बानी और इखलास के साथ मुजयन कर रखे हैं। एक तरफ ऐसे ऐसे मुस्लिम अफराद हैं जो लकू खा के वादे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे गुरबान हैं जिनके पास 100 पाउंड जमा थे या 200 पाउंड जमा थे, किसी जरूरत के लिए रखे हुए थे, बिला तरद उन्होंने वो पेश कर दिया। और फिर वो नज़ारा नजर आ रहा है जो तहरीक जदीद के आगाज पर मस्तूरात का मैं बचपन में अपने घर में देखा करता था। औरतें बच्चियां, किसी ने चूड़ी पकड़ी हुई, किसी ने गड़ा पकड़ा हुआ, किसी ने गुंदे, बड़े अजीब जज्बे जोश के साथ अगर दूसरे माउद की खिदमत हाजिर हुआ करती थी कि हमारी कुर्बानी कबूल फरमाएं। इंग्लिस्तान की जमात में भी बकसरत ऐसी मस्तूरात हैं जिन्होंने बड़े जौक और शौक के साथ अपने हाथों के कंगन उतार दिए, अपनी चूड़ियाँ उतार दी, अपने गुंदे उतार दिए, अपने सर के देवर उतार दिए, और बादलों ने तो ऐसी प्यारी अदा के साथ भिजवाया है कि बच्चियों की अंगूठियाँ, उनके गुंदे छोटे छोटे हर एक का नाम लिख कर सजा कर, जिस तरह जाहिल लोग दुनिया में बकरे सजाते हैं, वो तो अपने ब्याह की खातिर सजाते हैं, लेकिन खुदा के बंदे अपने तोहफों को खुदा के हुजूर सजा के पेश करते हैं, किसी ब्याह की खातिर नहीं बल्कि महज दिल ही मोहब्बत में। तो बड़े प्यार से सजा कर उन देवरों को भिजवाया गया। बाज नौजवान जोड़ों ने इस कुर्बानी का मुजाहरा किया, खुदसन उनकी बीवियाँ तो गैर मामूली तौर पर दुआओं की मुस्तहिक हैं कि खामन ने अपनी जगह चंदे दिए और बीवी की तस्कीन नहीं मिली। उसने कहा कि जब तक मैं जेवर नहीं दूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। चुनाचे बावजूद इसके कि खामन ने सारे खानदान को शामिल किया हुआ था, उन्होंने फिर भी अपना जेवर भिजवा दिया। एक बच्ची ने मालूम होता है कि अपने वो सेट भी भिजवा दिया है जो उसको बरी में मिला था, और वो भी भिजवा दिया है जो जेल में मिला था, क्योंकि दो मुकम्मल सेट हैं। और बड़ी आजमी के साथ यर्ज करते हुए कि इसको कबूल फरमाएं और मेरे दिल की तस्कीन का सम्मान करें। तो अजीब दुनिया है ये, कुछ लोग हैं जो नाक लोगों के छीन कर अपने हाथों में पहनते हैं और लोगों की दौलतों को अपने गर्दनों के कड़े बना देते हैं, जो आखिर तौत बनने वाले हैं, लेकिन ऐसे भी लोग दुनिया में। और कुछ ऐसे हैं जिनको अपने हाथों के जेवर बुरे करने लगते हैं, उनसे नफरत होने लगती है, अपने गलों के हार उतार देते हैं खुदा के खातिर, और इस बात में उनको तस्कीन मिलती है कि हम खाली हो गए हैं अपने रब के। इस जमात को दुनिया की कौन ताकत मार सकती है? बड़ा ही जाहिल है वो शख्स जो ये समझता है कि मैं वो कहूँ दुनिया में इस जमात को दबा करने। बड़े बड़े पहले आए हैं, बड़े बड़े हमने पहले देखे हैं, आए और नेस तो नाबूद हो गए, उनके निशान मिल गए, लेकिन इन गरीबों की कुर्बानी को खुदा ने कबूल फरमाया और पहले से बढ़कर अजमत और शान अदा की, जिन्होंने अपने घर खुदा के लिए खाली किए, उन पर इतनी बरकतें नाजिल फरमाई कि आज उनकी औलादें भी उनकी नेकियों का फल खा रही हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। तो इस नए कुर्बानी के दौर में जमात में दाखिल हुई है, नई खुशखबरियों के दौर में दाखिल हुई, नई अजीम शान तरक्यात के दौर में दाखिल हुई, और अल्लाह ताला के फजल से बड़ी तेजी के साथ अब हम उन मकासद को भी हासिल कर रहे हैं जिनकी खातिर इन चंदों की तहरीकात की थी। चुनाचे आज भी अमेरिका से ये खुशखबरियाँ मौसूल हुई हैं, जमात को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ अल्लाह की राह में दुख का मज़ा है, वहाँ खुदा की तरफ से जो फजल नाजिल होते हैं उनका भी तो एक मज़ा है, और वो भी अजीब मज़ा है। इसलिए दोनों बातें इकट्ठी चलनी चाहिए, और मोमिन की अजीब शान है, उसके दुख में भी लज्जत है, उसकी खुशी में भी लज्जत है। उसका दुख भी आंसू बन के गिरता है खुदा के हुजूर, उसकी खुशियाँ भी खुदा के हुजूर आंसू बन के गिरती है। ये दुनिया ही अलग है और दुनिया वाले इस दुनिया को समझ नहीं सकते। बहरहाल जो न्यूयॉर्क की खबर है, जो वाशिंगटन से शेख मुबारक खान साहब ने खुशखबरियाँ भिजवाई हैं, मैं आपको बताता हूँ कि न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अजीम शान, बहुत ही मुफीद और सिलसिले की जरूरियात को बहुत हद तक पूरा करने वाली इमारत का $4,57,000 में सौदा हो चुका है, और माहरीन ने जो देखा है वो उन्होंने कहा है कि ये इसकी कीमत $6,00,000 से कम नहीं थी। ये जमात की खुशकिस्मती है कि इतनी अच्छी इमारत न्यूयॉर्क में इतनी अच्छी जगह पर उनको मैसर आ जाए। और साथ ही एक अहमदी दोस्त ने, बाद अहमदी दोस्तों ने मिलकर एक मुल्का प्लॉट जिसके रिहायशी मकान भी मौजूद है, वो मिलकर जमात को तोहफा देने का फैसला कर लिया है, ताकि मुबल्लिग जो वहाँ ठहरे उसकी जरूरियात अलग भी पूरी हो सके और एक मेहमान खाना भी मिल जाए। लॉस एंजलिस में 4 एकड़ का प्लॉट खरीदा जा चुका है, और शिकागो में 5 एकड़ का प्लॉट खरीदा जा चुका है। डेट्रॉइट में जहाँ मुजफ्फर शहीद हुए थे, 7 एकड़ का एक प्लॉट का सौदा हो चुका है, और उसके साथ मकान भी शामिल है। और वाशिंगटन में जो हमारा मरकज है, वहाँ खुदा के फजल से 44 एकड़ का रकबा खरीद लिया गया है, और अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। ये तो 5 मराकज हैं जिनके मतलब मैं निशानदेही करके पहले अमेरिका से कहा था कि ये 5 मराकज को जल्द से जल्द कायम करें, लेकिन साथ ही मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर 10 हो जाएं और बाकी जो 5 हैं वो जमात मुकामी तौर पर इस कुर्बानी के अलावा कोशिश करके बनाए, तो उससे मुझे बहुत ही खुशी पहुँचेगी। एक तहरीर का जरिया था, चुनाचे जमात ने उसको भी कबूल किया, और यॉर्क में एक उम्दा इमारत इस चलते की तहरीक के अलावा खरीदी जा चुकी है, और वो यॉर्क का सेंटर बन गया है। और न्यू जर्सी में एक कोने का नहायत उम्दा प्लॉट जो 1 एकड़ का है, वहाँ के हमारे मुखलिस एमडी डॉक्टर जो $25,000 चंदे का इस तहरीक में भी दे चुके थे, उन्होंने ख्वाहिश दायर की है और बल्कि खरीद कर पेश कर दिया है, और कार्रवाई मुकम्मल हो गई। तो ये खुशखबरियाँ भी हैं अल्लाह ताला की फजल के साथ, और आज हम इंशाल्लाह ताला शाम को एक प्लॉट देखने जाएंगे जो आपके यूरोप के पहले मरकज के लिए खरीदा जा रहा है। अब आप दुआ करें अल्लाह ताला उसमें भी हमारी रहनुमाई फरमाए, और वो एक तालिबन 16 से 18 एकड़ तक का रकबा है जिसमें इमारत भी बनी हुई है, और साथ वसी पैमाने पर ज़मीन भी मिल रही है। मेरा जो अंदाज़ा था वो ये था कि £5,5,00,000 के 2 मराकज हम सरदस्त कायम करेंगे, तो उस लिहाज से उम्मीद नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख के लगभग तो चंदे चंदों के वादे आ चुके हैं, और जेवरात की कीमतें लगकर उनको भी इसमें दाखिल करना बाकी है। तो बहरहाल जो भी अल्लाह ताला अता फरमाए उसके बेहतरीन मसरफ की तौफीक से अता फरमाए, और जो हम इमारत खरीदें उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमेशा इसे इस्लाम की खिदमत में एक हर ईंट उसकी इस्लाम की खिदमत में इस्तेमाल हो, हर कोना उसका, हर साए की जगह, हर धूप की जगह, अंदर और बाहर अल्लाह की बरकतें उस पर नाजिल हों, और क़यामत तक के लिए वो इमारतें उन लोगों के लिए दुआ बन जाएं जिन्होंने उनकी खरीद में कुर्बानियाँ पेश की हैं और उनकी तामीर में हिस्सा लिया है। तो एक हम इमारत का ज्यादा देने आ जाएंगे जैसे हमने बयान किया है अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, जर्मनी को भी हदायत कर दी गई है कि वो जल्द अज जल्द जायजा लें। तो दुश्मन तो हमें मारने के मनसूबे बना रहा है, हमें कुछ और नजर आ रहा है, बिल्कुल उलट नतज जाहिर हो रहे हैं। ज्यादा कुवत ज्यादा शान के साथ जमात आगे बढ़ रही है और तमाम दुनिया से जरा इरादा है और एक हिस्सा उसका पूरा भी हो चुका है कि बारी बारी मुख्तलिफ जगहों से मफूद मंगवा कर उनसे उनके इलाकों में खसूसी तबलीग की मुहिम तेज करने के लिए मशवरे होंगे और फिर उन मनसूबों पर अमल दरामद होगा। चुनाचे एक वफद हाल ही में रुखसत हुआ है, अभी तकरीबन हफ्ते से ज़ायद उन्होंने यहाँ क़याम किया, उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और बहुत ही मुफीद मशवरे हुए। ऐसे ऐसे एवेन्यूज ऐसे ईवान खुले कामों के कि पहले उस तब की तरफ तसव्वुर भी नहीं जा सकता था। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर बाद जगह दौरा करना है, बाद जगह लोगों को यहाँ बुलवाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमेशा दुश्मन को उसकी मुखालफत उसकी तवक्को से बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है, ये मुखालफत इतनी महंगी पड़ेगी कि नस्लें उनकी आएंगी जो दुश्मन रहेंगी और आपकी नस्लें दुआएं देंगी एक वक्त आकर उन लोगों को जिनकी बेहयाई के नतीजे में अल्लाह ने इतने फजल हमारे ऊपर फरमाए। ये भी तरीका होता है जवाब का कि हम दुआ देते हैं जालिम तुझे कि तेरे जुल्म के नतीजे में इतने फजल खुदा ने हम पर नाज़िल फरमा दिए। यहाँ जो एक दफा ऐसा ही वाकया गुजरा रब्बा में, एक पुराने जमाने की बात है, इतनी पुरानी भी नहीं लेकिन तकरीबन 13-14 साल की, एक पीपल पार्टी के रहनुमा जो वजीर भी थे वो रब्बा देखने के लिए आ गए और तकरीबन उसी सारिश ने मुझे फरमाया कि तुम उनको दिखाओ। चुनाचे उनको दिखाते दिखाते जब मैंने तहरीक जदीद का दफ्तर दिखाया तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ये आप लोगों का तोहफा है। मैंने कहा हमने कौन सा तुम्हें तोहफा दिया है। मैंने कहा नहीं, आपसे पहले लोग दे चुके हैं। और फिर वक्फे जदीद का दिखाया तो उन्होंने कहा ये क्या है। मैंने कहा ये भी आप लोगों का तोहफा है। फिर उन्होंने ताज्जुब किया। मैंने कहा आपसे पहले लोग दे चुके हैं तोहफा, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा कि आप ही एक तोहफा देने वाले हैं और वो बाद में जाहिर हो। तो आखिर उन्होंने बेचैन होकर कहा कि बताओ तो सही कि क्या कह रहे हो, किन मुहिमों में बातें कर रहे हो। मैंने कहा तहरीक जदीद का आगाज उस वक्त हुआ था जबकि जमात ने अल्लाह ताला के फजल से तौफीक पाकर मुसलमानों की एक बहुत अजीब शान खिदमत की थी यानी कश्मीर में, और बदकिस्मती से उस दौर के रहनुमाओं ने समझा कि अब अगर इस खिदमत को कबूल कर लिया गया तो जमात बड़ी तेजी से फैल जाएगी, इसलिए इसका बदला जुल्म के सिवा और कोई बदला नहीं। चुनाचे तहरीक मरी से हरात खारिज हुई और ये इरादे हुए कि कादियान की एक सीट बजा दी, ये दावे हुए कि एक भी नहीं बचेगा यहाँ इस शह बस्ती में जो मिर्जा साहब का नाम भी जानता। उस वक्त एक और आवाज हमने उठती हुई सुनी और वो आवाज ये ऐलान कर रही थी कि मैं हरार के पांव तले से जमीन निकलती हुई देखा और इस कसरत से खुदा हमें फहराएगा कि दुनिया के कोने कोने में हमें फैला देगा और दुनिया के कोने कोने में किनारों तक अल्लाह अपने फजल के साथ उसी मौसम करने को पहुंचाएगा। चुनाचे वही हुआ और उस जुल्म के बदले में अल्लाह ने तहरीक के जदीद के तौर पर हम पर फजल नाजिल फरमाया। तो ये ऐसा तोहफा है तुम्हारा जुल्म का कि जब खुदा की तकदीर हम तक पहुंचाने से पहले पहले इसे फजल में बदल देती है। जो तुम जुल्म देकर चलाते हो वो फजलों में तब्दील होता चला जाता है। मैंने कहा ये कोई नया वाकया नहीं है, ये अज़ल से इसी तरह होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, आग ही भड़काई गई थी, लेकिन इब्राहिम तक पहुंचने से पहले पहले वो गुलजार में तब्दील हो चुकी थी। या नारुकुनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम की आवाज तय हो जाती। तो तोहफे तो तुम्हारे ही है इसमें कोई शक, लेकिन अल्लाह की तकदीर एक ट्रांसफॉर्म करती चली जाती है। जिस तरह गंदगी को नहर की खूबसूरत फूलों और फलों में तब्दील कर देती है खुदा की तकदीर, अल्लाह से कौन लड़ सकता। तो तुम गंदगी के तोहफे भेजते हो वो रहमतों के फूल बनकर हम पर बरसते हैं, तुम जुल्म के तोहफे भेजते हो वो फजल बनकर हम पर नाज़िल होते हैं। तो है तुम्हारा ही तोहफा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तकदीर इलाही से होकर आया। फिर वक्फे जदीद का मैंने बताया, और अभी वो मूवमेंट नहीं चली थी जो बाद में पीपल्स पार्टी ने चलाई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप देखेंगे कि आप ही एक तोहफा दे गए और उस तोहफे को भी खुदा फजलों में तब्दील करे। और जमात पहले से बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़े गए, इतना चाहिए हमने देखा। तो जिस खुदा की ये अटल तकदीर जमात ने देखी हो और हर दुख को रहमतों और फजलों और खुशियों में तब्दील होते देखा हो, उस जमात के हौसले कौन बिठा सकता है, उस जमात की शिकस्त कौन दे सकता है। इसलिए लाजमन जमातें हम ये जीतेंगी, लाजमन आप जीतेंगे, और खुदा के लिए आजिज और गरीब बंदे जीतेंगे जिनको आज दुनिया कमजोर समझकर जो जालिम उठता है उसको जुल्म शुरू कर। तकदीर इलाही ने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत ना हारे, हमेशा दुआओं और सब्र के साथ अपने इस राह पर कायम रहे और देखें कि अल्लाह ताला किस कसरत के साथ आप पर फजल नाज़िल फरमाता है।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا
جو خوشخبریاں میں نے آپ کو سنائی ان میں ایک ایسی خوشخبری کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو ان سب پر بھاری ہے۔ اس سے زیادہ عظیم شان خوشخبری کوئی ایمبی اپنے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ خوشخبری ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے بخاری میں، آمدن صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ روایت تو بدل والی تھی، دوسری روایت ہے، یہ کنز العمال میں ہے، یہ حدیث بخاری میں نہیں، کنز العمال میں۔ آمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے سارے حقوق تلف کر لیے جائیں گے، لیکن وہ اپنی طرف سے تمام حقوق ادا کیا کریں گے، باوجود اس کے کہ ایک طرف لوگ ان کے حقوق تلف کر رہے ہوں گے، وہ اپنی طرف سے تمام حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہیں اور میں ان کا، خدا ان پر فضل نازل فرمائے گا، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور میں یہ خوشخبری ان کو دیتا ہوں کہ وہ میرے ہیں اور میں ان کا۔ تو جس جماعت کے نصیب میں، جس کے مقدر میں یہ لکھا جائے کہ 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بتا دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ ان کے سارے حقوق طرف کر لیے جائیں گے، لیکن وہ اپنی طرف سے سارے حقوق ادا کرتے رہے، اور 1400 سال پہلے حضور نے یہ پیغام بھیجا ہوا ہمیں کہ میں تمہارا ہوں تم میرے، اس سے بڑھ کر اور کیا جنت ہماری ہو سکتی۔ بس یہ بھی خوشخبری ہے، توبہ رکھو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہیں توبہ ہو، تمہیں بے انتہا برکتیں اور خوشخبریاں خدا کی طرف سے پہنچتی رہیں کہ وہ تم محمد مصطفیٰ کے ہو چکے ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنا ہے، دو جنازہ ہے غائب کا، एक जनाजा गायब तो मुकर्रम मुजरम मौलाना शाह मोहम्मद साहेब सैयद शाह मोहम्मद साहेब साबिक मुबशिर इंडोनेशिया का है, बड़े फिदाई खिदमत करने वाले दुआ को साहेब कश बुजुर्ग थे और मतल मजदूर हमेशा खिदमत में मसरूफ रहे। उनके मुतलिक मालूम हुआ कि उनको इंडोनेशिया में हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से उनको वफ़ात हो गई। इसी तरह एक खातून हैं आपा सलीमा बेगम जो हैदराबाद दक्कन के एक नहायत मुखलिस खानदान की खातून हैं और सेठ गुलाम गौस साहब की साहबजादी हैं। इनको हमेशा से ही जमात से बहुत ही गैर मामूली इश्क रहा है और मुझे याद है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम आते ही आपके खुलफा का बल्कि आपके बच्चों का बेइख्तियार की आंखों से आंसू बरसने लगते थे और उनकी ये छेड़ बन गई थी कि आपा को तो बस नाम ले लो कोई मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या खलीफा वक्त का या आपके बच्चों का तो ये पूरे जज्बात से रोने लग जाती और वाकई में आंसू से रोती थी। ऐसी मोहब्बत थी कि बर्दाश्त नहीं होती। तो ये भी बड़ी लंबी बीमारी के बाद वफात पा गई है कराची में। गैर मामूली जो कि इश्क का जज्बा रखते थे इसलिए है इनके लिए भी नमाज जनाजा लायक पड़ गया है। يستجب لكم